नहीं कुछ चाहे अब। जब से तुमको जाना है
दिल और नहीं कुछ चाहे अब, जब से तुमको जाना है।
ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है।
ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है। तेरी बात मुझे हर भाती है, श्रीमत परवारी
के तुमको ओ बाबा, अंदर का सुख पाऊं मैं।
तेरी बात मुझे हर भाती है, श्रीमत परवारी जाऊं मैं।
सुन कर के तुमको ओ बाबा, अंदर का सुख पाऊं मैं।
मेरा दिल तो बाबा तेरी मुरली का दीवाना,
हे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है।
ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है।
फिर माथे तेरी शिक्षाएं भरती है अनोखा बल मुझ में।
अब सारे रिश्ते ओ बाबा मुझे आते नजर हर पल तुझ में।
फिर माथे तेरी शिक्षाएं भरती है अनोखा बल मुझ में।
अब सारे रिश्ते ओ बाबा मुझे आते नजर हर पल तुझ में।
अब तेरे लिए ओ बाबा ना कोई बहाना है।
ओ मेरे मीठे बाबा,
बस तू ही मेरा खजाना है।
ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है।
खुद पर ओ बाबा तू बना जो मेरा मित्र।
तेरी यादें मन को कर देती मेरे बाबा परम पवित्र।
मुझे नाज है खुद पर ओ बाबा तू बना जो मेरा मित्र।
तब जान लियो ही तुझको मैंने जो जाना है।
ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है।
ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है।
बस तू ही मेरा खजाना है।
बस तू ही मेरा खजाना है।
ओम शांति। अभी हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता रामनाथ भाई जी। एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। भ्राता जी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां धार्मिकता का बोलबाला था, जिस कारण से बाल्यकाल से ही धर्म पुस्तकों का पढ़ने का आपका सौभाग्य रहा। लेकिन जैसे बाबा कहते हैं, उन पुस्तकों में विस्तार बहुत होता है लेकिन सार पकड़ में नहीं आता है। सो परमात्मा की खोज बनी रही और 1972 में जब ईश्वरीय ज्ञान मिला तो परमात्मा की खोज पूरी हुई और अब नई यात्रा आरंभ हुई कि परमात्मा के ज्ञान को जीवन में प्रैक्टिकल में उतारना, और इसी को प्रैक्टिकल में उतारते रहे और परमात्मा अवतरण की धरनी मधुबन में पहली बार 1978 में आए। यहाँ की छाप दिलो दिमाग पर ऐसी अचूक पड़ी कि अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं अर्थ समर्पित कर दिया। तो 1978 से लेकर आज दिन तक हेडक्वार्टर की धरनी पर रहकर आप अपनी अमूल्य सेवाएं दे रहे हैं। 1990 से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर धार्मिक सम्मेलन भी आप आयोजित करते रहे हैं। वर्तमान में आप धार्मिक सेवा प्रभाग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं और हमारा जो राजयोग मुख्य स्टडी है इस ईश्वरीय पढ़ाई की, उसको बहुत सरल और बहुत वैज्ञानिक पद्धति से देश और विदेश के भाइयों के सम्मुख रखकर उन्हें कन्विंस करना, उनके हर प्रश्न का समाधान प्रस्तुत करना, ये आपकी बहुत बड़ी खूबी है। और आए दिन आप पूरे भारत भर तो क्या, विश्व भर में भ्रमण करते रहते हैं और बाबा के ज्ञान से सभी को लाभान्वित करते रहते हैं। आज हमारे बीच में बहुत सुंदर विषय पर प्रकाश डालने के लिए विषय है ज्ञान में दृढ़ता न होने का कारण और निवारण। सुनते हैं भ्राता जी से, आदरणीय भ्राता जी।
ओम शांति, ओम शांति। देखो आज का टॉपिक है और आज बाबा ने एक नई बात बताई, कभी मुरली में सुनाया नहीं है। कौन सी आयु? वो तो बाबा दा ने पहले भी बताया, ऐसे एक पॉइंट बताया जो कभी भी सुनाया नहीं, ऐसा नया कुछ शब्द बताया। बाबा ने कहा सारे कल्प में अशरीरी बनने का अभ्यास कभी नहीं करते। अशरीरी बनो कहा, लेकिन सारे कल्प में यही एक समय है जो अशरीरी बनने का अभ्यास करना है और कभी नहीं करते। अशरीर बनने का कभी अभ्यास करते हैं? सिर्फ संग। क्यों? यहां से परमधाम जाना है। कौन जाएगा? अशरीरी जाएगा। दूसरा तो निराकार अशरीरी बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। कितना भी आप योग लगाओ विकर्म विनाश नहीं होंगे, क्योंकि आत्मा के अंदर विकर्म है। नहीं तो रावण भी तो शिव को याद करता था ना, हम भी शिव को याद करते हैं। अंतर क्या है? अंतर क्या है? रावण भी तो शिव को याद करता था, लेकिन शिव बाबा ने आकर हमको विधि बताया कि आत्मा समझ मुझे याद करेंगे तो विकर्म विनाश होगा। तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर एक ही राजयोग है, दो नहीं है। इसलिए आज दो चार दिन से देख लो मुरली में एक शब्द बार बार आ रहा है, तो आप में से कोई बताओ कि बुद्धि योग, मन का योग नहीं कहा, बुद्धि योग लगाओ। तो बुद्धि योग कैसे लगाएंगे? योग में तो मन चलेगा ना, तो बुद्धि योग क्या है? रोज, कल भी बताया, आज भी बताया, रोज दो चार दिन से बुद्धि योग की बात कहा। जैसे रविवार को भी सुनाया कि बाबा बच्चों को दो जन्मते, एक दिव्य बुद्धि और एक रूहानी दृष्टि दो चीज होती है ना, एक ही होती है। तो रूहानी बुद्धि दिव्य दृष्टि क्या है? सोचा, मुरली सुनी, तब कहा मुरली की धारणा अपने आप ने, आपको नहीं हमें भी नहीं होती है। आज बाबा ने कहा मंथन करो, तो सारे मुरली सुनते सुनते ही, कोई भी हो तो सुनते सुनते एक नया शब्द देखो, आज बाबा ने मुरली में नई क्या चीज बताया, तो मुरली के ऊपर पूरा ध्यान देता है। नई चीज कुछ चाहिए, वो सोचकर उसका चिंतन मंथन करके औरों को सुनाते हो तो खुशी होती थी, अपने आप खुशी नहीं रहती है। हम शुरू में जब आए मधुबन में तो गुलजार सब दादियां क्लास कराती थी, तो गुलजार दादी रोज क्लास में एक ही शब्द बोलती थी ज्यादा, कि खुश रहो, खुशी बांटो। तो मैं रोज सोचता था कि दादी ने खुशी तो दिया नहीं, बांटो कहां से बांटेंगे, कहां से। जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा, अगर आपने ध्यान दिया हो वरदान में, सर्व शक्तियों का अनुभव करो। अगर रसगुल्ला खिलाया तो मीठा लगेगा ना, खाया दिया नहीं और कब मिठास अनुभव करो, कैसे होगा अनुभव होगा? खाएंगे तो अनुभव होगा ना। अगर आपको रसगुल्ला दिया, खाया, हाँ बहुत मीठा था, तब बताएंगे ना। अब बाबा ने आज कहा बच्चे सर्व शक्तियों का अनुभव करो तो संपन्नता होंगी। तो अनुभव कैसे करेंगे आप? दिया है तो अनुभव करेंगे, तो दिया तो नहीं, तो दिया है आपको, आपको रसगुल्ला दिया, आम दिया, तो खाने के बाद बताएंगे आम मिला, अभी आम दिया नहीं आपको और आपको आम खा लो और मीठा है कि नहीं बताओ। अरे आम भी नहीं दिया और मीठा कैसे होगा, खाया नहीं अभी, देने के बाद खाएंगे ना, देने के बाद ना, अपने आप ले, मैं ले नहीं सकता, अगर खाना जाके अपने आप ले लो, देंगे तो सोचने लायक सोचना। तो हम शुरू में सोचते थे, तो गुलजार दी एक दिन सुन करके मैं वॉकिंग करने गया, हमने कहा गुलजार दादी ने कहा कि खुशी बांटो, दिया तो नहीं है, अगर माँ बाप ने पैसे दिया तो बांटेंगे ना, तो कच्चा बच्चे दान करो, कैसे दान करो, बच्चों के पास पैसे है, आपके पास सर्वशक्तियां है नहीं है, तो दान कैसे करेंगे, अनुभव कैसे करेंगे। तो यहां मैं सोचता था, तो सोचते सोचते गया तो विचार आया कि ढूंढना चाहिए, मंथन करना, अपने आप ज्ञान का मंथन नहीं करेंगे तो शक्ति नहीं आती, आती है धारणा भी नहीं होती है, धनवान भी नहीं बन सकते हो, बुद्धि स्वच्छ भी नहीं होती है। तो सिर्फ सुनना सब कुछ नहीं है, मुरली पढ़ के सुनाना पोस्टमैन का काम है, लेटर आया लेटर दे दिया। तो वो मुरली सुनाते समय भी मुरली रात को पहले पढ़ना होता है, स्कूल में भी टीचर पहले पढ़ता है फिर आके पढ़ाता है, अगर उसने पहले पढ़ा नहीं तो वो उसका पढ़ाई समझ में नहीं आती है, अगर पहले पढ़ा है वो एक्सप्लेन करता है, उदाहरण देता है ना। तब बाबा ने कहा पढ़ेंगे लिखेंगे, तब सिर्फ पढ़ने से नहीं, सिर्फ सुने सुनने से नहीं, धारणा नहीं होती है। तो सारे मुरले से कोई एक शब्द ले लो, बस दो भी नहीं चाहिए, और नया होना चाहिए, वही का वही पॉइंट नहीं, और रोज होता है उसको नोट करो, उसका चिंतन करो, इसका अर्थ क्या है, ये कैसे करना है। फिर कोई मिला सवेरे से रात तक, दो चार लोगों को आप सुनाओ, सिर्फ बाबा ने ये कहा इतना नहीं, बाबा ने ये कहा इसका अर्थ ये है, ये ऐसे करना चाहिए, तब जाके आपके संस्कार बन जाते हैं, ये ज्ञान धन जमा करने का तरीका है, इसको कहते मंथन। सुन लिया, ये मन ने सुन लिया, पानी के ऊपर लकीर, सुनने के बाद अगर आपने अपने आप को पढ़ाइए, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया, ये मुझे करना चाहिए, सुनते सुनते ही आपके अंदर अपने आप को पढ़ाते हो, क्योंकि दूसरों को पढ़ाना सबसे सहज काम है और सबसे कठिन है अपने आप को पढ़ाना। अभी आके आपने एक दो दिन तो हुआ, मुरली सुनी, किसी ने किसी को सुनाया नहीं, सुनी लिख के रख दिया, कब काम में आएगा वो, किसके लिए हो? तो सुनने बच्चा देखो एक साल स्कूल में पढ़ता है, एक साल के बाद परीक्षा आती है, पेपर दिया जाता है, तो प्रश्नों का 10 पेज लिखता है, किताब देख के लिखता है, यहां है जो उसने एक साल पढ़ के अंदर भरा बुद्धि के अंदर, वो 10 पेज लिखता है। एक बच्चा रोज स्कूल में जाता है, खेलता है, घूमता है इधर उधर, बुद्धि में कुछ नहीं, प्रश्न पूछा एक पेज भी लिख नहीं सकता है। यहां भी ऐसी, अगर आपका बुद्धि योग लगना है, बुद्धि योग कौन बताएगा, किसी ने बोला नहीं, बुद्धि योग क्या है? बुद्धि योग कैसे लगाना चाहिए, कैसे लगाते हो? यह हमारा ज्ञान नहीं है, कहीं बाबा ने विजुअलाइज कहा, दुनिया का ज्ञान क्यों सुनाते हो? बाबा ने कहा श्रीमत पर ज्ञान यूज करेंगे तो प्राप्ति है, ये दुनिया का ज्ञान है, अपना नहीं। और बताओ, नहीं बुद्धि, बुद्धि कैसे लगेंगी? आप योग में बैठेंगे तो मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु हूं, शिव बाबा, मैं ऐसे करेंगे ना, मन सोचेगा ना, तो बुद्धि तो नहीं लगती है, मन लगता है, मन विचार करता है। हाँ, वो कैसे लगेगा? अभी दो हाथ अलग है, ये दोनों अलग है, ये अपने आप एक बनेगा, अलग ही है, तो इनको एक कैसे करो? एक बताओ, हाँ सोचेगा, एक्यूरेट बोला, तो सोच है, बुद्धि नहीं लगी इधर, है ना, सोच मन करता है। तो यहां बुद्धि योग बाबा ने कहा, आज भी कहा कल भी, बुद्धि कैसे लगेंगी? ये कभी मुरली में कहीं भी बाबा ने कहा विजुअलाइज करो, कहीं भी ना, ये दुनिया का ज्ञान है। कहीं भी मुरली लाओ किसी भी, तो बाबा का ज्ञान श्रीमत के अनुसार कुछ करते हो तो भाग्य बनता है। अच्छा लग रहा, मैं आंखें बंद करके योग करता, करो, प्राप्ति नहीं होगी। रावण भी तो शिव को याद करता था, क्या हुआ? नहीं, चाहे लाख करो विकर्म विनाश नहीं। इसलिए ब्रह्मा कुमार इसके अंदर एक ही राजयोग है, दो नहीं, किसी को भी पूछो, दो नहीं, एक ही राजयोग है। क्या है वो? अगर ये बताओ, कोई अगर आपको पूछे ब्रह्मा कुमार इसके अंदर क्यों जाते हो राजयोग, तो राजयोग क्या है? सबका एक आवाज होना चाहिए, और रोज मुरली में सुनाता है, एक थोड़ा कम हो गया। ब्रह्मा कुमार इसके अंदर राजयोग है, किसी ने पूछा एक ही शब्द आना चाहिए, एक रोज आता है मुरली में, अपने को आत्मा समझ, परम पिता शिव परमात्मा। लोग परमात्मा कहते हैं, परमात्मा कौन? शिव परमात्मा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होगा, ये पूरा चाहिए। अपने को आत्मा समझना है, नहीं तो योग नहीं लगेगा पहले, फिर लोगों को समझाना पड़े आत्मा कैसे समझे, फिर परम पिता है वो, कहां है वो, कौन है वो? परमात्मा शिव है, शिव बोलना है, और उसको याद करना, क्या याद करेंगे तो विकर्म विनाश होगा, नहीं तो नहीं। ये तीन बातें योग के अंदर आती है, ये अगर आपने किसी को समझाया तो आपने राजयोग का ज्ञान दिया, और ये शिव बाबा ने परमधाम से आके सिखाया हुआ ज्ञान है। अगर ये नहीं सुनाया और बहुत कुछ सुनाया तो राजयोग का ज्ञान नहीं दिया है, नहीं तो स्वामी विवेकानंद ने जो राजयोग सिखाया है, पतंजलि के अंदर राजयोग है, तो शिव बाबा ने कौन सा दिन रोज सुनाता है, तब तक विकर्म विनाश नहीं होते, विकर्म तब होगा। तो इसलिए प्रश्न है कि बुद्धि अपने आप ने, जब आपने सवेरे मुरली सुनी है ना, तो किसको याद है, कहां याद है वो, पूछा क्या सुनाया था, तुरंत बताएगा आज बाबा ने ये कहा। ये कौन बताएगा, जिसके बुद्धि के अंदर गया, सुना याद नहीं, इसने भी सुना, लिखा भी इसने, पूछो याद नहीं है। याद मना बुद्धि, जो सुना उसी समय आपने अपने आप को समझाया, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, ये मुझे करना चाहिए, ये कैसे करूं, सोचा, तो बुद्धि के अंदर गया, इसको कहते हैं धारणा हुई। तब आप कोई मिला सवेरे से रात तक तुरंत सुनाते हो, वो ब्राह्मण है, जिनके बुद्धि के अंदर ज्ञान है। अब आया आप योग में बैठे सुबह शाम को, और योग में बैठते ही याद आया, अरे आज बाबा ने क्या कहा था, ये किसने पूछा, मन ने पूछा, बुद्धि के अंदर ढूंढते हो क्या सुनाया था, हां आज बाबा ने कहा था सारे कल्प में, है ना, ये बुद्धि, तो ये बुद्धि के अंदर जागृत होता है। ऐसे किसने कहा, शिव बाबा ने कहा, और क्या कहा शिव बाबा ने, मुझे याद करो, सर्वशक्तिवान को याद करो, कौन सी शक्ति, फिर बुद्धि को, बुद्धि चलती है, इसको कहते हैं बुद्धि योग। बुद्धि के अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, सारी मुरली भरी हुई है, तो बुद्धि के अंदर मन में, मन पूछता है योग में बैठते, आज बाबा ने क्या कहा, पूछेगा तो बताएंगे ना, नहीं तो कोई नहीं बताता है। अगर मैं आपको पूछे बहन जी आपका नाम, तो आप बोलेंगे ना, अपने आप तो नहीं बोलेंगे, बुद्धि के अंदर बहुत कुछ भरा है, कलयुग की दुनिया की बातें भी भरी है, लेकिन आपको क्या चाहिए, योग में बैठते योग की बातें ही निकालना है। किसी को ज्ञान सुनाते हो उस समय योग की नहीं, ज्ञान की बात, ये बुद्धि के अंदर है, इसलिए बुद्धि को यूज करो। तो बुद्धि के अंदर क्या चीज है, बुद्धि ग्रहण करती, इसलिए देख लो साइंस ने बनाया, दिया हमको मोबाइल, करके दिखाया, मोबाइल में 10 नंबर डालो, एक मिनट में अमेरिका आवाज चला जाता है, कैसे गया हो, और आप इधर बैठे हो, आप कहते हो मेरा आवाज परंधाम में जाएगा, जाएगा मोबाइल में, ऐसे एक नंबर कम करो जाएगा आवाज, तो कैसे गया, कभी सोचा, इतना सा छोटा मशीन के अंदर 10 नंबर डालो, यहां से आवाज अमेरिका चला जाता है, कैसे गया वो। और आप भी कहते हो यहां बैठकर हम विश्व का परिवर्तन करते हैं, प्रकृति का परिवर्तन करते हैं, परमधाम में शिव बाबा से बात करते हैं, कोई पूछे तो क्या जवाब देंगे आप, जवाब चाहिए ना, ऐसे नहीं चलेगा ना, हम योग करते कोई नहीं मानेगा, उसका अर्थ इतना सहज है क्योंकि हम खोलते नहीं है, तब विकर्म विनाश नहीं होते हैं, धारणा नहीं होती। कभी किसी को पूछो मुरली क्या सुनाई, तब कहेंगे बाबा ने आज का मेरे सुपूत बच्चे ही विश्व का सेवा कर सकते हैं। कल का था सत्युग का इनाम किसको मिलेगा, है ना, कल बताया था, जो रेस करते बुद्धि का, बुद्धि का, मन का नहीं। तो योग में बैठते हो या कभी भी, पहले मुरली, आज जो मुरली सुने रात, तो भी किसी ने आपको पूछा तो तुरंत बताते हो आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने ये कहा, तब आप अपने को ब्राह्मण कहते हो। ब्राह्मणों के बुद्धि हाथ में है ना, ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, वो दिखाते हैं प्रैक्टिकल संगम पर, हमारे बुद्धि में ज्ञान चाहिए। अगर बुद्धि में ज्ञान है तो बुद्धि स्वच्छ है, इतना ही नहीं है, स्वच्छ है। तो रात को बाबा ने कहा देखो अगर बुरे स्वप्न भी आया ये भी महापाप है, क्या स्वप्न को रोक सकते हो आप, रोक सकते हैं, रात को नींद में हो अगर बुरे स्वप्न आए तो रोक सकते हैं, नहीं सोचे में आता है, आपको पूछ के स्वप्न नहीं आता है, क्या का कहां का बचपन के कहां कहां का आता है जो आज आपने देखा नहीं, हां है ना, अंदर है आता है, तो पूछ के नहीं आता है। आज खाने का आएगा, पुराने विकर्म आएगा, बचपन का कहां कहां का आएगा। तो वो स्वप्न में अंदर बुरे स्वप्न अगर आ जाए तो क्या आप रोक सकते हो? बाबा ने कहा ये भी महापाप है। हां महापाप है तो उसको रोक सकते हो? तो क्या करें, उसके तरीका क्या है? उधर याद तो नहीं है, सोए हो आप उधर कुछ भी नहीं है, तो उसकी विधि बताया। उसकी विधि ये है, उसी को आप दुनिया में कहते हो। दो दिन पहले बाबा ने कहा था रविवार में, नेगेटिव को पॉजिटिव करो। कैसे करेंगे? अगर किसी को देखते ही उनकी वृत्ति को परिवर्तन करो, कैसे करेंगे? आप सुनते हो, बोलते हो, लेकिन उसका अनुभव चाहिए, विधि चाहिए। सहज है, कोई कठिन नहीं, लेकिन उसको सोचना चाहिए। ये कैसा, किसी के अंदर गलत चल रहा है मेरे लिए, तो आप उसको पॉजिटिव कर सकते हो? बाबा कहते हैं नेगेटिव वृत्ति को, अशुभ वृत्ति को आपकी शुभ वृत्ति से परिवर्तन करो। हो सकता है ये? नहीं, संभव ही नहीं है, कोई कर ही नहीं सकता, कोई अभी तक जन्म ही नहीं आया। लेकिन बाबा विधि बताता है, हमको अभ्यास करना है, प्रयत्न करना है। रात को बाबा कहते हैं कोई भी बुरा स्वप्न नहीं आना है, किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन शिव बाबा ने असंभव है ये ऐसी विधि बताया है। तो वो पहले जानेंगे तो अभ्यास करेंगे, कोई कठिन नहीं है। तो पहले आज की मुरली के पॉइंट अगर आपको याद है, अपने आप याद नहीं रहेगा, उसकी विधि है। एक मुरली के पॉइंट सुनते सुनते ही नोट करना चाहिए, ये बहुत अच्छे पॉइंट सुनाया। फिर ये इसका अर्थ क्या है? आज बाबा ने कहा याद का कवच पहनो। तो कवच कहां मिलता है, कहां से मिलेगा, क्या चीज है ये? ये सोचा, फिर इनको बोला आपने, आज बाबा ने कहा याद का कवच वो कहां मिलता है, वो क्या चीज है, और किसी को पूछा, तो बुद्धि के अंदर ज्ञान धारण हो गया। और रात को आप सोए, बुद्धि स्वच्छ है, क्योंकि ज्ञान है। तो स्वच्छ बुद्धि, पुराने पाप जागृत होंगे, बुरे स्वप्न आएंगे जरूर, तुरंत आपको जगा देगा। जग गए, खत्म हो गया। किसने जगाया? बुद्धि ने। बुद्धि वॉचमैन है, अगर वो सोया है पुराने स्वप्न आएंगे, आधा घंटा चलेगा। तो कौन रोकेगा? स्वच्छ बुद्धि। स्वच्छ बुद्धि कैसे होंगी? आज की एक मुरली के पॉइंट रात तक याद है, तो वो स्वच्छ बुद्धि में रहता है। रात रहने के तरीका है, लिख के रखना है, चिंतन भी करना है, और आसवेरे दिन में रात तक किसी ने दो चार लोगों को सुनाना है, तब धारणा होती है। 10 दफा मुरली पढ़ो, धारणा नहीं होंगी, संस्कार नहीं होगा। चिंतन करके तो बुद्धि की याद से बताना चाहिए, पढ़ के बताओ भले, आज बाबा ने ये कहा था। इसको कहते ज्ञान की धारणा, ये बुद्धि के अंदर गया। तब योग में बैठते हो तो बाबा से बात करते, बाबा आप कहते हो सदा पवित्र रहो, बाबा कल तो मैंने किसी का हाथ का खाया, तो वो तो याद है, कल उन्होंने गुस्सा करते करते खाना खाया बनाया, क्या करो? तो बाबा से बात करते हो। कोई भी समस्या जब कुछ है, बाबा से बात कर, सब भरा हुआ है, वो अपने आप जागृत हो। इसको कहा बुद्धि योग। अगर बुद्धि के अंदर सब कुछ भरा हुआ है, तो योग के अंदर पवित्रता के ऊपर बाबा के 8 शक्ति है, वो भी किसी को पता है 8 शक्ति कौन सी है? शिव बाबा कौन? सर्व शक्तिवान। तो कौन सी शक्तियां हैं? बाबा को याद नहीं करते हो? करते हो? अब ये बताएंगे, इसने कल रात को सुना था, अभी देखो रात को सुना था, वो हिस्ट्री हॉल में वहां छोड़ के आई कि लेके आई, देखना पड़ेगा। बता, रात को थी ना, चश्मे वाला आप आगे बैठी थी, रात को थी? हाँ देखो, मैंने देखा, याद, आगे आगे बैठी थी। तो बताओ, कल रात को सुना था, याद है कि उधर छोड़ के आई? तो सर्वशक्तियां कौन सी? देखा, शिव बाबा को स्नान करना पड़ता है, रात को सुना, इसको ही पूछा था, और उसने बोलना बोला नहीं था, फिर उसको बताया, है ना, आगे आगे बैठी थी, अभी भी आगे बैठी है। तो जाता नहीं है, इसके लिए कहा लिखना पड़ता है। आपने हमको भी मुरली का एक शब्द, क्यों ऐसा पवित्र कोई इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ अभी तक। तप का तपो प्रधान बुद्धि बनी है पत्थर का आज। एक ही शब्द ले लो, दो भी नहीं ले लो, तो लिखना चाहिए, है ना। लिख करके बाहर क्लास से आते ही किसी न के इधर उधर की बात न करते पहले आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया, आज मुरली क्लास सुना, आज क्लास में ये बात बहुत अच्छी बताई। ये आपके मुख से आता है तो संस्कार बनता है, धारणा हो गई। ऐसे आदत डालना चाहिए सवेरे से रात तक, यही पुरुषार्थ है और कुछ नहीं है। कोई भी विकार छोड़ने, क्रोध छोड़ने की इच्छा भी नहीं रखना, छोड़ना नहीं कुछ भी, कोई आप छोड़ नहीं सकते, ये कर सकते हो ये करो। दवाई ले लो बीमारी अपने आप जाती, बीमारी छोड़ने जाओ नहीं जा सकते, दवाई ले लो। तो एक मुरली के पॉइंट अगर सवेरे से रात तक कभी भी अगर किसी ने भी पूछा, तब आप ब्राह्मण, तब आप बुद्धि स्वच्छ है और कुछ नहीं करना है। तब जाके योग में बैठते हो, एक घंटा नहीं आधा घंटा, ज्यादा नहीं, सूक्ष्मतन या परमधाम, कोई इधर उधर के विचार नहीं आते, क्यों बुद्धि के अंदर और कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ज्ञान था, बार बार सुनाते हो। अगर सवेरे से सुनकर दो चार लोगों को रात तक नहीं सुनाया और उस योग में बैठकर योग लगेगा, उसका असंभव है, एक घोर कलयुग है, वातावरण में भी नेगेटिव है, वो भी बैठ जाती है। एक फिर योग करने के फिर भी कुछ संसार में हम सन्यासी तो नहीं है, कोई गलत चीज दिखाई देते, कोई सुनाई देता है, बहुत कुछ होता है, तो भी आप योग लगा सकते हो। तब बाबा ने कहा कि आपको मन बुद्धि को चलाने की विधि चाहिए, नहीं तो मन बुद्धि को संस्कार चलाएंगे, वो चलाते बैठते याद है, इधर की याद उधर की याद सब आएंगे, नहीं कोई नहीं आना है। तो विधि बाबा ने बताया कि बैठते ही एक भी आपको व्यर्थ विकल्प माया रावण कुछ नहीं आएगा, तो मन बुद्धि को आप चलाओ। जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं ना लेफ्ट राइट, तो तभी उसी अनुसार चल उठाएंगे लेफ्ट राइट, जो कहेंगे वैसे करेंगे। यहां भी ऐसे ही मन बुद्धि को आप ये एक एक प्रश्न दे दो, तो वो विधि बताया कि मैं कौन पूछना, तो बुद्धि जवाब देती है। मेरा रूप पूछना, तो बुद्धि जवाब देती है। अगर नहीं पूछा बुद्धि के अंदर, अरे मुझे उसको फोन करना था, उसने कल ऐसे कहा था, आपको नहीं हम भी बैठेंगे तो आएगा। दादी प्रकाशमणि भी पूछती थी जब हम सब बैठते थे तभी, अगर योग में बैठकर सेवा का भी विचार आया, ये भी योग नहीं है, सेवा का समय अलग है। योग के समय पर सिर्फ आप और बाप, आत्मचिंतन किया, शिव बाबा की सर्व शक्तियां है, एक एक शक्ति लिया, तो किसी ने बताया नहीं शिव बाबा की कौन सी शक्तियां है, देखो नंबर वन बैठा तो नंबर वन जवाब, आपका नंबर टू चला गया, आप नंबर टू बैठे हो, देखो इसको याद है पवित्रता शिव बाबा की, कल रात को सुना इसको, देखो उधर ही छोड़ के आए। आठ शक्तियां है, पवित्रता का सागर रोज मुरली में आता है और किधर से नहीं, देखना रोज सभी पॉइंट्स आते हैं। आनंद शांति का सागर, जहां पवित्रता है वहां शांति है, जहां शांति है वहां आनंद है ना, प्रेम प्यार नहीं है, आनंद स्नेह का सागर बाबा बताता है ना। अब ये आध्यात्मिक शब्द है, आनंद परमानंद रिस्पेक्टेड शब्द है, आनंद का सागर ज्ञान का सागर, दुख हरता सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, भाग्य बनाने की विधि बताता है। सेवा तो सारी दुनिया करती है, लेकिन यहां जो सेवा करते हो उससे पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। अंतर क्या है दोनों, दुनिया की सेवा और यहां सेवा में अंतर क्या है, अंतर है यहां कुछ भी करते हो, कुछ भी करो पद्मों की कमाई जमा होती है। वही सेवा भक्ति में भी करते हैं, भंडारे में वहां भी पैसे डालते हैं, एक का एक गुना मिलेगा। उसका अर्थ है, ये सोचना है कैसे बाबा मेरा भाग्य बनाता है। फिर दिव्य बुद्धि दाता है, ये आठ शक्तियां सर्वशक्तिवान कहा, याद रहेगा। तो एक एक शक्ति लेकर अगर आप मंथन करते हो, अभी सुना, याद रहे बुद्धि को, पूछेंगे शिव बाबा कौन, तुरंत बुद्धि कहेंगे हां कल बताया था शिव बाबा पवित्रता का सागर है। अब उसके ऊपर सोच रहे हो, पवित्रता के ऊपर बाबा ने 50 साल मुरली चलाया है, वो सारा ज्ञान जिसने पढ़ाई किया अंदर है। तो बाबा से बात करते हो, बाबा आप कहते हो पवित्र रहो, आप ऊपर बैठे हो, आप इधर आओ तो पता चलेगा पवित्र कैसे रहना है। बाबा आप कहते हो किसी अपवित्र व्यक्ति का नहीं खाओ, तो अपवित्र कौन पवित्र है? इधर एक भी व्यक्ति होगा बिना क्रोध करता हुआ कोई पवित्र व्यक्ति है तो कैसे मिलेगा? बात करो उससे, उसी को पूछो, उसने बोला था। तो ऐसे एक आधा घंटा बात करते हो पवित्रता के ऊपर ही, तो अग्नि है वो, अग्नि से जोड़ा आपने, इसको कहता है योग अग्नि, बीज रुस्तिति ज्वालामुखी और कुछ नहीं है। एक एक शक्ति पर कम से कम, जैसे धूप में बैठो आधा घंटा बैठो पसीना निकलता है, 2 मिनट बैठो और आ जाओ पसीना निकलेगा, आधा घंटा कम से कम अग्नि चाहिए एक एक शक्ति के ऊपर। फिर दूसरा दिन ले लो शांति का सागर, क्या शांति माना क्या, आनंद का सागर। तो इसको कहते एक एक शक्ति में तलवे में जाओ, एक शक्ति का चिंतन करते हो तो ये बुद्धि करती है, तो शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैलता है। वो शक्तिशाली वाइब्रेशन आपके बहुत जन्मों के पाप है, देखो बार बार बुरे स्वप्न आते हैं। अगर ऐसे योग करते हो तो वो 1-2 महीने के बाद आपको लगता है ये स्वप्न आता था अभी नहीं आ रहा है, हाँ योग से मिट गया, तब विश्वास होता है। अगर विश्वास नहीं है तो बाबा कहते मेरे पर विश्वास रखो, कैसे रखो, दवाई लिया बीमारी ठीक नहीं हुई, डॉक्टर कहता मेरे पर विश्वास रखो, कैसे रखेंगे, दवाई लेंगे बीमारी ठीक हो गया तो बताएंगे ना। बाबा कहते बता, मेरे पर विश्वास रखो, बाबा कुछ हुआ ही नहीं, कैसे रखेंगे विकर्म। तब बाबा कहता कल भी कहा याद करो विकर्म विनाश होना चाहिए, ये बुरे स्वप्न आते थे अभी नहीं आ रहे, अंदर की खाली हो रहा है, सफाई हो रहा है, तो उमंग उत्साहता है, और करना चाहिए, ये पूरा खाली करना चाहिए। कम से कम 1 महीना किसी को काम और क्रोध के स्वप्न नहीं आया, मिनिमम 1 महीना, मैक्सिमम 6 महीना काम और क्रोध के स्वप्न नहीं आया, उसका नाम कर्मातीत आत्मा, उसका नाम पुण्य आत्मा, उसका नाम फरिश्ता। अपने आप कोई फरिश्ता नहीं बनता है, अपने आप कोई कर्मातीत नहीं बनता है, कम से कम 1 महीना चाहिए। 4 प्रकार के स्वप्न हरेक को आते हैं, 2 प्रकार के खाने के विचार आया चलेगा, लेकिन काम और क्रोध पतित बनाता है। ये 1 महीना अगर स्वप्न नहीं आया, कम से कम ज्यादा से ज्यादा 6 महीना, तब पक्का हो गया अंदर कोई भी पाप नहीं, अंदर योग अग्नि से भस्म के आमने खाली किया, ये कर्मातीत है। ये पुरुषार्थ चाहिए, नहीं तो योग लगा रहे हो, योग में बैठते हो, नींद आ रही है, इधर उधर के विचार आ रहे हैं, किसको दिखाने के लिए करते हो, किसके लिए कर रहे हो, कुछ के लिए, अपने को ठगना है। तो विधि चाहिए, कोई मेहनत भी नहीं, सहज राजयोग नाम दिया है, और 5 मिनट बैठो 10 मिनट बैठो, स्वइच्छा से बैठो, उठकर अगर नींद नहीं आई रात को अर्जन सो जाओ, शाम को करो, दिखा आके बैठ के यहां नींद करो। तो बाबा ने कहा सद्गुरु का निंदा है, अरे ये भाई जी नींद करता है योग में बैठकर, और आपके वाइब्रेशन भी औरों को जाता है, और एक दूसरों को देखते लोग देख के ज्यादा करते हैं, है ना। तो हम अपने लिए नहीं है, औरों के लिए भी है, संसार में रहते हम सन्यासी नहीं, गुफा में नहीं रहते हैं, तो अलर्ट चाहिए, भले 15 मिनट बैठो, 5-10 मिनट बैठो, लेकिन बैठते ही पूछ लो, एक जगह पर बैठो, विधि है आत्मा समझ मैं कौन, पूछना, तो बुद्धि जवाब देती है, मेरा रूप पूछना, बुद्धि जवाब देते, नहीं तो बुद्धि के अंदर भरा है, बहुत कुछ आता रहेगा, नहीं कुछ नहीं आना, जो मैं पूछता हूं वही आना है, अपने आप वही आएगा, पूछते रहो। मेरे गुण 7 गुण है, सत्युग में हम पवित्र थे, अभी नहीं, शांत स्वरूप थे हम, तो 7 गुण एक आते रहेंगे, फिर पूछो, छोड़ना नहीं 1 सेकंड। फिर मेरे कर्म, मैं आंखों से देखता हूं, अभी योग में बैठकर इधर उधर नहीं देखना, आंखें बंद नहीं करना। कहां से आया मैं? परमधाम से। परमधाम में कौन है? शिव बाबा। कौन है वो? पूछते जाना, नहीं तो बुद्धि भागेगी, अगर उसको पूछा नहीं तो इधर उधर जाएगा। पूछते, बात करते रहो। परमधाम, परमधाम में कौन है? शिव बाबा। कौन है वो? पवित्रता का सागर। पवित्रता का सागर माना क्या? किसमें पवित्र है वो? मुझे किसमें बनना है? अब इसके ऊपर आप 1 घंटा सोच सकते हो, जिसके अंदर पूरा पवित्रता का ज्ञान भरा हुआ है, एक उसको कहते हैं लगन में मगन। वो अगन अनेक जन्मों के विकर्म विनाश कर सकता है, ऐसे कर सकते हो? कभी बैठते हो ऐसा? बैठ सकते हो? पूछ लो, बैठ सकते है? आज बैठेगी, कल पूछा तो बताएंगे, इसके जैसे तो नहीं करना, वो कहेंगे भाई जी सुना भूल ही गए। हाँ, कर सकते है? पक्का बैठेंगे तो आपकी बुद्धि परमधाम में दिखाई तो नहीं देगा, तो बाबा ऊपर है, तो बात करते करते एक ही पवित्र, एक में लगन में मगन, तब वो अग्नि बहुत जलवा भी, ऐसे कम से कम रोज 1-2 महीना चाहिए, 6 महीना भी चाहिए, ज्यादा बहुत पाप किया, कपड़े ज्यादा काले हो गए तो ज्यादा घिसना पड़ेगा ना, छोटा सा काला है पानी में डालो निकालो। तो ऐसी योग, बहुत पाप किया हुआ है, बहुत बुरे स्वप्न आते हैं, तो ऐसी क्यों? सारे कल्प के अंदर यही एक संगम का समय है, अगर अभी आपने मिटाया नहीं, दोबारा सारे कल्प में और दोबारा चांस नहीं मिलेगा, और संगम पर ही अभी भी थोड़ा दिन के बाद समय नहीं मिलेगा। अब देख रहे हो कहां बाढ़ आ रही है, कहां बीमारी है, कहीं लाइट नहीं है, कहीं गर्मी है, एक जगह बैठने के लिए भी साधन वातावरण चाहिए, नहीं तो आप योग में बैठ नहीं सकते हो। अभी नीचे जाओ, कितनी गर्मी है ना, यहां देखो ठंडा है आराम से, तो यहां बैठ करके ऐसे अगर तपस्या करो तो बहुत जन्मों के, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने बैठकर यहां तपस्या किया, दादियों ने यहां ही बैठ के तपस्या किया, आज इतनी दादियां अपने आप नहीं बनी, कैसे बनी? यहां ही तपस्या किया। तो ये तपस्या करने की भूमि है, तपो भूमि कहा, नहीं तो तपस्या किसी ने किया, उसको देखने के लिए कहां कहां यात्रा करते है ना, तीर्थ स्थान उन्होंने किया, उधर जाके आप तो नहीं कर, देखने के लिए जाते हो, यहां आप करते हो। तो यहां बैठ के विधि पूर्वक एक एक समय निकालो, शांति स्तंभ पर बैठो, हिस्ट्री हॉल में बैठो, बाबा कमरा है, झोपड़ी है, इधर है, जिसको अपना कुछ करना है आराम से आके बैठो और अपने को जागृत करो, पूछो मैं कौन, बुद्धि मानती है कि इधर उधर जाती है? तब तक प्रश्नों का जवाब नहीं दे तब आगे नहीं जाना, पूछो बार बार, बुद्धि को लाओ, यह हाथ इधर आता ही नहीं है, है ना, हाथ जोड़ो का अपने आप आएगा नहीं, ये तो जोड़ना पड़ता है। तो ये मन और बुद्धि, ये दोनों शक्ति ऐसी जाती है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका मन बुद्धि एक हो, इसलिए कहते ध्यान लगता नहीं है, तो अपने आप लगने वाला नहीं है। और जब तक ज्ञान बुद्धि में नहीं तो स्वच्छ बुद्धि नजदीक नहीं आती है। अगर बुद्धि स्वच्छ रखने की विधि, एक मुरली के पॉइंट याद रहना चाहिए, रहेगा, रह सकता है, कल बताया था, आज याद नहीं रखा, नहीं आपके ऊपर नजर जाएंगे, हाँ तो आपने भूल किया, कल कहा था एक पॉइंट बताओ, अभी याद है, कल बताया था नहीं, हाँ एक पॉइंट बताओ, हमने तो 2 बताया, आप एक बताओ, एक कहा याद का कवच पहनो, बताया आज, हाँ वो कल था। आज भी था, बाबा ने कहा श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो विश्व कल्याणकारी, कल बता था, आज योग के वरदान में सुनाया कि सर्व शक्तियों का अनुभव कर, यही तो आप परमधाम में बुद्ध जाएंगे, बुद्धि योग जोड़ेंगे, शक्तियों का चिंतन, तब रसगुल्ला खाया है ना, खाएंगे तो हाँ खुशी होंगे ना, आज योग अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, तो पेट भर जाएगा तो शक्ति आएंगी, तब वो मांगता नहीं है कि पेट भर गया, और कभी कुछ चाहता नहीं है, कुछ दिया तो भी नहीं चाहिए, भरपूर वो देता है। तब का मांगने वाले नहीं बनो, देने वाले कौन बनेगा, जिसका पेट भरा हुआ है। कैसे भरा, शक्तियों का अनुभव करना चाहिए, वो अपने आप नहीं होता, उधर जाकर बाबा कैसे पवित्र है, मैं भी कैसे पवित्र बनूं। अगर आधा घंटा अगर आपने सोच करके उसका रस लिया है, आम तो उधर है झाड़ पर आपको मिलेगा, जहां आम निकालकर खाएंगे तो कहेंगे बहुत मीठा है ना, ये अनुभव। शक्तिशाली उधर है, वो अपने आप नहीं देगा, आपको जाना है, और शक्ति का चिंतन करेंगे तो खाएंगे तो अनुभव होगा। तो ऐसे अनुभवी आत्मा सदा भरपूर है, वो मांगता नहीं है, वो देता है, तो उसका नाम है देवता है। ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते है? करते हो योग, अगर अमृत वेले बैठते योग करते हो ऐसा? नहीं, कोई नहीं करता है, करते है? पक्का? आज किया था, आज मुरली सुनी थी तो क्या सुना था बताओ, देखो डायरी देख के नहीं, इधर होना चाहिए मुरली में, एक पॉइंट तुरंत बताओ। हाँ देखो, ऐसे मुरली के पॉइंट तुरंत बताना चाहिए, होता है, कोई कठिन नहीं है। आप कहेंगे भाई जी हमको याद ही नहीं रहता है, हमारी पत्थर बुद्धि, ऐसे नहीं, लिखो, बाबा ये सिखाता है, पत्थर बुद्धि को पारस बनाना सिखाता है, वो सीखना चाहिए, लिख सुनो, लिखो, अपने आप को पढ़ाओ, दो चार लोगों को पढ़ाओ, आदत बनेंगी, यही काम करेंगे ना इधर। अगर इधर नहीं करेंगे सारा क्लब में कौन कराएगा, और कोई मिलेगा, कोई नहीं सिखाएगा ऐसा, तो यहां बाबा सिखाता है। हाँ तो ये ऐसे बुद्धि चाहिए, तो ऐसे सुनाए आज किसी को, आज शाम तक कितने लोगों को सुनाएगा? हाँ चार ही बस, बाबा ने कहा एक व्यक्ति को सुनाएंगे, एक का पदम गुना, एक युग में धनवान होंगे तो पांचवे युग में गरीब हो गया तो चलेगा, तो आपने कहा चार ही, तो कम से कम 84 जन्म जाए ना, तो एक जन्म में कम गरीब हो गया तो चलेगा, ये ज्ञान धन कमाई करो, तो एक को मुरली के पॉइंट सुनाते हो, एक जन्म के लिए धनवान बनेंगे, इतने सहज है, कुछ नहीं करना आपको, नहीं हमें भी, अगर आज मुझे क्लास नहीं करना है तो आप, मैंने देखा आज क्लास नहीं करना है तो सब रात भर तो मुरली लिखी भी सुनी भी याद नहीं आएगा, अगर क्लास करना है बार बार चलेगा, तो ऐसी आदत डालो कि मुझे मुरली के सुनते ही नोट कर लेना, ये पॉइंट मुझे इनको सुनाना है, मुझे इनको फोन करके बताना है, सुनते ही अंडरलाइन अपने को पढ़ा दो। तो क्यों, डिमांड एंड सप्लाई दो चीजें है, खाना कब बनाते हो आप, मेहमान आने वाला है तो अच्छी अच्छी चीज बनाते हो, नहीं तो बनाते हो, नहीं तो कुछ नहीं। तो यहां भी देने की आदत डालो तो ज्ञान धारण होगा, अगर देने की आदत नहीं डाली, 50 साल से चलो, 1 साल से चलो, उसका कुछ मतलब नहीं है, धारणा के ऊपर है। तो देने की आदत डालो, मुझे सवेरे कोई मिला नहीं आज, जानबूझ के इसको शाम को फोन करना, अरे आज सेंटर में गए थे बाबा ने देखो बहुत अच्छी बात सुनाई, जानबूझ के करो, क्यों, उसके लिए नहीं, अपना संस्कार बढ़ाने के लिए गए, तब कहेंगे संगम पर ब्राह्मण बने, तो फिर बाबा की जिम्मेवारी है ब्राह्मण बच्चे को वर्षा देना, उसकी जिम्मेवारी भी है। तो आज बाबा ने कहा बच्चों को वर्षा देने बाप आया है, कौन सा वर्षा देगा, वर्षा कौन सा देगा, नहीं सत्युग में ले जाएंगे आप, अगर आज बाबा देवे तो जा सकते हो, नहीं पहले कर्मातीत बनना पड़ेगा, पवित्र पहले बनना पड़ेगा, फिर सत्ययुग जाएगा। पहले शक्ति शिव बाबा के पास सत्ययुग नहीं है, वो आता भी नहीं है, शक्ति से देता है, सर्वशक्तियां देता है। तो शक्ति से हम कर्मातीत बनते हैं। तो बाबा ले जावे न ले जावे, सत्ययुग में जाएगा ही आप, वो और किधर जब उधर रुक ही नहीं सकता है। कर्मातीत बनने के लिए शक्तियों का वर्षा देता है, तो वर्षा सत्ययुग नहीं, सर्वशक्तियों का, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है, उसकी प्रॉपर्टी, वर्षा माना प्रॉपर्टी। तो उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? सत्ययुग है, वो आता भी नहीं, शिव बाबा देखता भी नहीं है, उसके पास अभी संगम पर सर्वशक्तियां है। तो तब कहा श्वासोश्वास कर्म करते रहो, स्नान कर रहे हो, खाना बना रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, शिव बाबा कौन कौन सी? अभी आज की दुनिया में शक्ति का मंथन चाहिए, तो शक्तिशाली स्थिति होती है, ज्ञान करनी चाहिए, ज्ञान सुन लिया, शक्तियों का मंथन चाहिए। क्यों? शक्तिशाली स्थिति ये कवच है। जैसे कभी भी आग लग सकती है, आग लगने के बाद कवच ढूंढो नहीं, पहले पहन के रख दो, क्योंकि घोर कलयुग है, युद्ध का मैदान है, किधर से भी तीर आ सकता है, पूछ के कोई मारता नहीं है। तदा तब बाबा ने कहा कवच पहनो, श्वासोश्वास बाबा को याद करो। तो बाबा की याद माना कभी भी आज के बाद याद रखना, अगर बाबा की याद करके छोड़ना नहीं, किसी को पता नहीं, याद माना क्या वो ऐसा सुनाना है, याद माना आठ शक्तियां है, शक्तियों का मंथन करो, याद करो कौन सी शक्तियां है, तो आपका भी पक्का अभ्यास हो जाएगा बार बार आठ शक्तियों का। नहीं तो हम कहते बाबा को याद करो, क्या याद करो कोई नहीं बताता है, तो नया कुछ करो, ठीक है ना? वो आत्मा की शक्ति है ना, हाँ। और वो जो सर्व शक्तियां है दुनिया वालों को बताते हैं, हाँ, पवित्रता का सागर। शिव बाबा, ये देखो मुरली में आता है, शिव बाबा पवित्रता का सागर आता है ना, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दूध मिक्स, दूध में पानी डाल देती है, देखो प्योर दूध दे दो, फिर दुख हरता, सुख मुक्ति, फिर भाग्य विधाता और दिव्य बुद्धि दाता। क्योंकि एक से एक अर्थ है, ये अर्थ सहित ऐसे नहीं है, जिस जो पवित्र है वो शांत है, जहां शांति है वहां आनंद है, भरपूरता है, हा? भाग्य विधाता दुख हरता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, कोई भी नहीं मुक्ति दे सकता है, एक ही शिव बाबा ही है जो मुक्ति जीवन मुक्ति देता है, इसलिए मुक्तेश्वर कहा है ना, शिव बाबा का नाम है देखा, और किसी का नहीं, कोई मुक्त नहीं कर सकता है, उसी के पास शक्ति है, ये भाग्य बनाता है। संसार में रहो आप, पहले भी खाना देते थे, अभी भी खाना देते हो, अंतर है, पहले खाना देते समय दान करते समय ये फकीर साधु है, ये फकीर शरीर को देखते थे, अभी किसी को देते हो, ये शिव बाबा का बच्चा है। तो बाबा को याद करते हुए कोई भी कर्म करते हो पद्मों की कमाई, क्यों? शिव बाबा अविनाशी है, नहीं है अभी है, तब का संगम पर ही सारे कल्प में देही अभिमानी बनने का, ये नया पॉइंट है, पहले कहा देहाभिमान बनना है लेकिन संगम पर ही, ये आज कहा, ये नया शब्द ऐसे ढूंढना है और उसका विचार कर, संगम पर क्यों, हम सत्ययुग में बनेंगे, संगम के बाद बनेंगे, हाँ हाँ, और संगम पर शिव बाबा आके फिर सोचना, तो देही अभिमानी कैसे बने फिर सोचना है, उसके लिए क्या करना चाहिए, तो ये प्लानिंग ये करते हो तो किसके मुरली सुनी उसका आपने मंथन किया, कुछ खाया तो वो खून बन गया, ताकत बनती, सिर्फ मुरली सुनी लिखी तो धारणा नहीं होती है, समझ में आया? ओम शांति, ठीक है, और कुछ रह गया? तो दो ही काम करो, बहुत कुछ करने नहीं जाना, तो बहुत कुछ किया ना तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। अब इधर भी आए हो, रोज एक मुरली के पॉइंट नया ढूंढो और कम से कम 10 लोगों को यहां से शुरू करो। सवेरे से रात को सोते सोते, चार लोग सोते हैं ना कमरे में, एक तो नहीं सोते, सोने जा रहे, बाबा को याद करो, क्या याद करेंगे? अरे आज आप अपने आप बोलना, आज बाबा ने देखो बहुत अच्छी बात सुनाया, तो चार लोगों के कान में जाएगा, है ना? तो अगर गया तो उसके अंदर भी चलेगा। तो और एक शब्द बताया था कि दूसरों की वृत्ति को चेंज करना। जैसे देखो आज मैंने इसको पूछा, अरे बाबा ने क्या कहा था, याद नहीं, तो मैंने सुना दिया। कल वो इधर से आ रहा, मैं उधर से जा रहा हूं, मुझे देखते ही उसके अंदर क्या आएगा, अरे आज भी मुरली के पॉइंट पूछेगा, है ना? उसके बुद्धि में ये वृत्ति है, उसके बुद्धि में क्या आया, पॉजिटिव आ गया। अगर चोर कहां से जा रहा है, पुलिस कहां से जा रहा है, तो उसके उसको डर लगती है, क्योंकि उस चोरी है ना, पुलिस और कुछ काम के लिए जा रहा है। तो आपको देखकर औरों के बुद्धि में, है ना, शुभ विचार आ जाए, तो वो आदत डालो। आज इनको पूछो, अरे आज बाबा ने उसको याद नहीं, आपने सुना दिया, कल आपको देखते दूर से देखते ही उसके बुद्धि में आएगा। तो ये औरों की वृत्ति को आप परिवर्तन कर सकते हो। तो शुभ वृत्ति आदत डालने पड़ते, ब्राह्मण वो आदत डालो, यहां से शुरू करो। कल सवेरे से अच्छा मुरली के पॉइंट ढूंढना नया, सवेरे से शाम तक 10 लोगों को सुनाना है, और कुछ नहीं करो। योग लगता नहीं है, धारणा नहीं होती, ये बोलना नहीं, दवाई ले लो तो कुछ होगा। दवाई बिना खाए हुए बीमारी जाएंगे क्या? समझ में आया? ठीक है, कर सकते हो। तब देखना योग, आधा घंटा, एक दो घंटा योग में बैठना नहीं, नींद करने के लिए बैठना नहीं, नींद आते तुरंत उठो, पानी पी करके आओ, बैठो 15, क्योंकि हमारे ये शरीर 15 मिनट अच्छी तरह से बैठ सकता है, खींच करके आधा घंटा। उससे आज का कलयुग दुनिया का शरीर, आप बुद्धि आधा घंटा स्थिर नहीं बैठ सकती है, उसको जबरदस्ती करेंगे व्यर्थ दूसरे विचार, नींद आएंगी, बार बार पाव हिलाते रहेंगे, है ना, तो फायदा नहीं है एक आसन पर। तो हरेक की कैपेसिटी है, वो देख के चलना चाहिए। ठीक है, ओम शांति।
जगमग ज्योति हूँ मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ।
तो सेशन को सभी ने एंजॉय किया बहुत, खास अपना अमूल्य समय निकाल कर आए आपको लाभान्वित करने के लिए। एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।